थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जल रही थी जिंदगी यहाँ गुनाह में, जल रही थी जिंदगी यहाँ गुनाह में, यीशु ने हमको ले लिया अपनी पनाह में, तेरा आवाज सबको आओ मेरे पास, तेरा आवाज सबको आओ मेरे पास, पास रखूंगा हमेशा होते क्यों निराश, जिसने पाया है हमें देकर अपनी जान, जिसने पाया है हमें देकर अपनी जान, उस मसीह की जो हर कहीं फैलाना है, हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, जब तक हम इस जहां में जलते जाना है, हम तो जलते दीप हैं।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय मित्र और परिवार के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल का अंतिम पुस्तक है। मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सभी श्रोता भाई बहनों को दिया है, ताकि हम अलग अलग स्थानों पर बैठकर रेडियो के माध्यम से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन को सुन सकते हैं। आज जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं तो हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक जब आपके वचन में से सुनता है तो निश्चित रीति से प्रभु आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उन्हें आत्मिक रीति से चंगाई छुटकारा देने पाए, उन्हें आत्मिक रीति से आशीषें देने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आप सभी श्रोता भाई बहनों को अपने नियंत्रण में लें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय अपने जीवन से परेशान हैं, निराश हैं, व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से। प्रभु जी, आप उनके हर एक बातों को जानते हैं, आप उन्हें शांति दे, उनके हर एक परेशानियों से आप उन्हें छुटकारा दे, ताकि वे आप पर और अधिक विश्वास करने पाएं, आप पर निर्भर होने पाएं। आज के अध्ययन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, मैंने आपसे कहा है कि हम सब इन दिनों प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यूहन्ना को प्रभु यीशु ने ऊपर स्वर्ग में बुलाया, जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में देखा था। वहां उसने परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे हुए देखा। उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक थी, पृथ्वी का अधिकार पत्र। एक सामर्थी स्वर्गदूत कह रहा था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मुहरें खोलने योग्य कौन है? जब कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, तब यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय एक प्राची ने उसे ढाड़स बंधाया। तो आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? इस संसार का पट्टा किसके पास है? कौन इस पर राज्य करने के योग्य है? कौन है जो न्याय और धार्मिकता स्थापित कर सकता है? क्या मानवीय शासन प्रणाली ऐसा कभी कर पाएगी? मुझे पूरा विश्वास है कि आप संसार के इतिहास में इस समय भ्रम में नहीं होंगे कि मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोज सकता है। परमेश्वर का वचन अति स्पष्ट कहता है कि मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। लिखा है एक बलवंत स्वर्गदूत, अर्थात सामर्थी स्वर्गदूत। तब कहता है ऊंचे शब्द, यह सामर्थ का प्रतीक है जिसकी अवश्य इस वाचा के प्रभावी होने में है। हम आगे देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, परंतु न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। मेरे प्रियो, आदम की वंशावली में से तो किसी के भी पास उस पुस्तक को खोलने का अधिकार नहीं है और न ही इस पृथ्वी का प्रबंधन संभालने का है। बहुतों ने इसका प्रयास किया है। आदम ने पाप करके अधिकार खो दिया। मूसा ने व्यवस्था तो दी परंतु स्वयं व्यवस्था का पालन नहीं कर पाया। दाऊद और उसके पुत्र असफल रहे। आदम की जाति में से आज एक भी मनुष्य इस योग्य नहीं है। जी हाँ, शासक को उद्धारकर्ता होना है, परम प्रधान को मानव जाति का उद्धारकर्ता होना है, और केवल प्रभु यीशु ही है जो इस योग्य है। आदम अलग हो, ना तो तू और ना ही तेरा वंश ऐसा कर पाएगा। कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि आदम और उसका वंश कभी भी ऐसा काम नहीं कर पाएगा, अर्थात योग्य ठहरे। शैतान भी अथक परिश्रम कर रहा था परंतु वह भी असफल रहेगा। अब प्रश्न यह है, कौन इस योग्य है? मेरे प्रियो, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। यह देख यूहन्ना बहुत दुखी हुआ। उसमें भविष्यवाणी का बहुत जोश था। उसमें पवित्र अनुराग और पावन जिज्ञासा थी। वह उन बातों को देखना चाहता था जिन्हें स्वर्गदूत भी नहीं देख पाते थे। यूहन्ना इस दृश्य में प्रवेश करता है क्योंकि वह पृथ्वी से आया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आंसुओं में लिखी गई थी। क्या पृथ्वी पाप और दुख में ही पड़ी रहेगी? क्या पृथ्वी का भविष्य नहीं है? सुनिए पौलुस क्या कहता है। रोमियों के पत्र 8 अध्याय उसके 23 पद में कहता है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। क्या इस पृथ्वी पर शासन करने के लिए कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है? यूहन्ना सोचने लगा कि कोई नहीं है। रोमियों के पत्र 8 अध्याय के 22 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। मेरे प्रियो, मेरे अपने विचार में विकासवाद एक अत्यधिक निराशावादी तत्व ज्ञान एवं विचार है जिसे आज कोई सोच पाए। इसमें संदेह नहीं कि बुद्धिजीवियों में आत्महत्याओं की कमी नहीं रही है। यदि हमें आज की स्थिति तक पहुंचने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं तो भविष्य के लिए हम क्या आशा रख सकते हैं? इस समस्या का समाधान करने वाला क्या कोई नहीं है? मनुष्य का दावा है कि वह आज शांति स्थापित कर देगा। उसकी छोटी और संकीर्ण मानसिकता है। जी हाँ, यह और भी अधिक दुखदायी होता है जब कलीसिया कहती है कि वे संसार की दशा सुधार सकती है या संसार सुसमाचार सुनने में सक्षम है। मेरे भाइयों, इस पृथ्वी का अधिकार पाने के लिए उस पुस्तक को खोलने योग्य यहाँ कोई नहीं है। यही कारण है कि यूहन्ना रोने लगता है। यदि यूहन्ना आज यहाँ होता तो अनेक प्रचारक हैं जो उसे बता सकते थे कि किसका उत्तर क्या है। यूहन्ना के पास तो समाधान है नहीं, परंतु उस पुस्तक को खोलने वाला है जिसे हम आगे चल करके देखेंगे, मसीह सिंह और मेमना के रूप में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। मेरे प्रियो, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ध्यान दीजिए, कहा मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यह तो स्पष्ट है कि कोई भी प्राचीन उत्तर दे सकता था, उनमें आत्मिक प्रकाशन था। मेरे विचार में यह अतिरिक्त पहचान है कि वे कलीसिया का प्रतीक हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 15 पद में, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। जी हाँ, केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जिसके पास इस पृथ्वी का अधिकार और पट्टा है। उसने आपको और मुझे ही मुक्त नहीं कराया, उसने पृथ्वी को भी मुक्त कराया है। इस अंश में वह पृथ्वी से संबंधित अपनी सब सेवाओं की पहचान करवाता है। आगे कहता है, यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यह इसराइल के यहूदा गोत्र से उसकी निश्चित पहचान है। अपने मरणासन पर याकूब ने अपने 12 पुत्रों को एकत्र कर यहूदा के विषय यह भविष्यवाणी की, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 49 अध्याय उसके 9 और 10 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दब कर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु यहूदा के गोत्र का सिंह है, वह दाऊद का मूल है। 2 सामुएल की पुस्तक 7 अध्याय में दाऊद के साथ बांधी गई परमेश्वर की महान वाचा का वर्णन है, मैं तेरे वंश से एक शासक उत्पन्न करूंगा जो इन लोगों ही पर नहीं परंतु संपूर्ण पृथ्वी पर राज करेगा। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु के पास राज करने का अधिकार है, क्योंकि वह भविष्य संबंधित पुराने नियम की भविष्यवाणियों का पूर्ति है। ये सब भविष्यवाणियां उस समय पूरी होंगी जब वह फिर से आएगा और पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय के 6 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके सात सिंह और सात आंखें थी। ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। मेरे प्रियो, यूहन्ना अब भी स्वर्ग का दर्शन देख रहा है। वह कहता है, मैंने देखा। जी हां, मेमना अर्थात भेड़ का बच्चा जो उसकी दीनता और वध के लिए स्वीकृत का द्योतक है। प्रभु यीशु वध के मेमने के समान उनके सामने था जिसने अपना मुंह नहीं खोला। इन सारी बातों को हम यशाया की पुस्तक 53 अध्याय के 7 पद में पढ़ते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 29 पद में हम इसे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, वध किया हुआ। जी हाँ, यह मुक्ति और प्रभु यीशु की उस मृत्यु का द्योतक है जो उसने हमारे लिए सही। यहाँ बल उस तथ्य पर है कि वह उपद्रव द्वारा घात किया गया था। आगे कहता है, खड़ा देखा। यह उसके पुनरुत्थान को प्रकट करता है। वह इस समय परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ नहीं है, वह उस ओर अग्रसर है। वह अधिकार की ओर बढ़ रहा है। वह इस पृथ्वी पर आने वाला है। महाक्लेश का दंड पृथ्वी पर आने वाला है। पृथ्वी पर दंड की हवा चलने लगी है। इसलिए आगे कहता है, उन सिंहासन के बीच में। इससे संकेत मिलता है कि वह सिंहासन के समक्ष है और धर्मी न्यायी का उत्तरदायित्व निभाने के लिए तैयार है। कहता है, सात सिंह अर्थात पूर्ण सामर्थ। सिंह अधिकार का प्रतीक है। आप देख सकते हैं दानियल नबी की पुस्तक उसके 7 और 8 पद में, वह सर्वशक्तिमान है। तब आगे कहता है, सात आंखें अर्थात वह सर्वज्ञानी है। प्रभु यीशु सब जानता है। वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वह आत्मा की परिपूर्णता में कार्य करता है। वह बुद्धि और विवेक का आत्मा है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु सिंह है और मेमना भी है। सिंह से उसका दूसरा आगमन प्रकट होता है और मेमने से उसका प्रथम आगमन प्रकट किया गया है। सिंह उसके वैभव का द्योतक है और मेमना उसकी दीनता को प्रकट करता है। सिंह रूप में वह परम प्रधान है और मेमना रूप में वह उद्धार करता है। सिंह उसके न्यायी होने का प्रतीक है और मेमना उसके न्याय के अधीन होने का प्रतीक है। सिंह परमेश्वर के राज्य का प्रतीक है और मेमना परमेश्वर के अनुग्रह का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय उसके 7 पद में आगे लिखा हुआ है, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु महाक्लेश के समय सिंहासन पर आता है। वह संसार को धार्मिकता में दंड देता है। इसके पूर्व कि वह धार्मिकता में राज्य स्थापित करे, अब वह कलीसिया के लिए मध्यस्थता करने वाला नहीं है, क्योंकि कलीसिया तो प्रभु यीशु के पास स्वर्ग में है। वह न्यायी रूप में काम करना आरंभ कर रहा है। यहां उसकी गतिविधि महत्वपूर्ण है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय के 8 पद में आगे लिखा हुआ है, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। कहता है, जब उसने पुस्तक ले ली। यहां पुस्तक लेने का काम पूरा हो चुका है। यह संपूर्ण सृष्टि की एक महान गतिविधि है और अब प्रभु यीशु नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। यहां चार प्राणियों और 24 प्राचीनों द्वारा प्रभु यीशु की आराधना पर ध्यान दें। कहता है, वीणा। वीणा का अर्थ है वे आराधना कर रहे हैं। वे वीणा बजा नहीं रहे हैं परंतु आराधना कर रहे हैं। वीणा मात्र स्तुति का प्रतीक है। मैं यह जानकर अत्यधिक प्रसन्न हूं कि मैं स्वर्ग में वीणा बजाने वाला स्वर्गदूत नहीं हूं। मेरे लिए यह उत्साह की बात नहीं है। आपको यह वीणा की आवश्यकता हो रही होगी। यदि आपको वीणा चाहिए तो स्वर्ग में वे आपको एक वीणा देंगे। मैं आभारी हूं कि मुझे एक वीणा लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, वे 24 प्राचीन याजक का काम करते हैं। केवल कलीसिया स्वर्ग में विश्वासियों का याजक वर्ग होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रसिद्ध विचारक डॉक्टर कार्ल आर्मड्रिंग एक बड़ा ही रोचक विचार प्रस्तुत करते हैं कि यूहन्ना अध्याय 17 में विश्वासियों के लिए की गई प्रभु यीशु की प्रार्थना का उत्तर ये प्राचीन है कि वे उसे जानें, उसके साथ रहें, उसकी महिमा देखें, सब स्वर्ग के इस दृश्य में पूरी हो गई है। आगे कहता है, धूप से भरे हुए सोने के कटोरे, ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। ये प्राचीन प्रभु यीशु मसीह की देह अर्थात कलीसिया का द्योतक है। ये याजक वर्ग हैं। मेरे प्रियो, यह क्या ही रोचक बात है कि हम स्वर्ग में होंगे और हम एक याजक वर्ग के लोग होंगे और हम उस परमेश्वर के सामने होंगे और उसको हम जानेंगे और उसकी महिमा करेंगे। मेरे श्रोता मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुताय से आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
ऐ मेरे बेटे, दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। ए बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है।